प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 4 अगस्त 2015 है और एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आज आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी के क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने एक उन नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है सचिन पोरवाल और आप कानपुर के रहने वाले हैं। तो सचिन, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप आइए और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जितना ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं उतना ले जाने की कोशिश कीजिए। मित्रों, कल मैं मोटिवेशन वाले पार्ट में खासकर ले जाने की ही बात कर रहा था। हम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि आप लेते हैं, कोई आपको देता नहीं है, और ये आपके लेने की क्षमता ही सही मायने में आपके होने का प्रमाण है। यानी कि आप जो कुछ भी होते हैं वो वही होते हैं जितना आप ले पाते हैं। मित्रों, इसको रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इस पर हम लोगों को थोड़ी सी विस्तार के साथ बातें करनी चाहिए, तो मैं आज इसे और आगे बढ़ाऊंगा। और फ्रेंड्स, कल के ही मोटिवेशन वाले हिस्से में मैंने एक बात आप लोगों से और कही थी और वो बात ये थी कि अपने को ज्यादा से ज्यादा हल्का करें ताकि लोग आपको अपने कंधे पर उठाकर आपके कद को बड़ा बना सकें और यहां तक कि आप इतने हल्के हो जाएं कि धरती से उठते उठते पूरे पूरे अंतरिक्ष में फैल जाएं। मैंने एक बात कही थी, एक सिंपल सी चीज, आप अपने को हल्का करें। तो दोस्तों, क्या सच में ये अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा कि इसी विषय पर आप सब लगभग 1200 शब्दों का एक निबंध लिखने की कोशिश करें। आप सब ये काम करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब निबंध लिखें और बाद में इसके बाद, यानी कि हो सकता है कल या हो सकता है परसों, फिर मोटिवेशन वाले सेक्शन में मैं इसी इश्यू को उठाऊं कि स्वयं को हल्का करें। तो यदि आप इस पर निबंध लिख लेंगे तो हो सकता है कि मेरी बातें सुनने के बाद आप जब अपने को इवेलुएट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी बिल्कुल उसी लाइन पर सोच रहे हैं जिस लाइन पर मैंने सोचा है, या आप उस लाइन पर नहीं सोच पाए तो अब आपको कौन सी नई नई बातें सोचने के लिए मिल रही हैं। तो इससे फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सच पूछिए तो आपको यकीन भी दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप सच में ईमानदारी के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी भी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको लिखने की प्रैक्टिस की आदत होनी ही चाहिए। मैं जानता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट अपना 95% क्या शायद 100% समय सिर्फ पढ़ने 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 में लगाते हैं, लिखने की आदत नहीं डालते, और उनका जो मूल्यांकन होता है वो इस बात पर नहीं होता कि उन्होंने कितने घंटे की पढ़ाई की है, इस बात पर होता है कि उन्होंने लिखा क्या है। और जिस बात से उनका मूल्यांकन होना है उसी बात को वे करते नहीं है। तो मित्रों, ये एक नई शुरुआत है कि आप इस पर अपने अपने ढंग से निबंध लिखें, बाद में फिर हम इस पर हो सकता है कि बातें भी करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने इस इशू पर कि आप लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस दिन आप इस सच्चाई को समझ जाएंगे, पहली बात तो यह है कि आपके मन से शिकायतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। हम दुनिया भर से शिकायतें करते रहते हैं, माता पिता ने हमें ये नहीं दिया, इस स्कूल के टीचर्स ने हमें ये नहीं बताया, फलाना 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 फलाना, मौसम से लेकर के और परिवार के सदस्यों तक। मित्रों, दो चीजें होती हैं। नंबर एक, पहला तो वो होता है कि जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, और दूसरा वह जिस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता। मां बाप हमारे कौन होंगे, हम कहां पैदा होंगे, हमारा परिवार कैसा होगा, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जन्म लेने के बाद हम कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या बनेंगे, इस पर हमारा नियंत्रण होता है। इसे आपको समझना होगा। अक्सर हम इस सेकेंड पार्ट को नहीं समझ पाते। जैसे एक सामान्य तौर पर उदाहरण के रूप में लें, फ्रेंड्स बारिश हो रही है, राइट, और वो बारिश हर तरह की जमीन के टुकड़ों पर बरस रही है। रेतीली भूमि पर भी बरस रही है, काली मिट्टी पर भी बरस रही है, दुआबी जमीन पर भी बरस रही है, चट्टानों पर भी बरस रही है, सब जगह बरस रही है। लेकिन जो उस पानी को अपने अंदर समाने की बात है, समोने की बात है, या उस पानी को लेने की बात है, वो सब जगह समान नहीं है। जो चट्टानी जमीन है वो पानी को बहुत अंदर ले पाएगी, थोड़ा सा अधिक उससे ले पाएगी रेतीली जमीन। काली मिट्टी ऊपर से बहुत जल्दी चिकनी हो जाएगी, बहुत जल्दी गीली हो जाएगी, थोड़ा सा अंदर भी ले जाएगी लेकिन उतनी ज्यादा अंदर नहीं ले जा पाएगी जितनी ज्यादा मैदान के उपजाऊ जमीन उसे अपने अंदर ले जा पाएगी। यहां तक कि फिर आप उसे खोदिए तो पता लगेगा कि 50 मीटर पर आपको पानी का कुंड मिल गया, 50 फीट पर आपको पानी का कुंड मिल गया। उसने न केवल जमीन को समाया ही है बल्कि संग्रहित भी करके रखा हुआ है। तो अब आप कह सकते हैं कि अब उस चट्टान का बिचारे का क्या दोष, रेतीली जमीन का बिचारे का क्या दोष, वो तो प्रकृति ने जैसा बना दिया उसी तरीके से वो पानी को ले पा रही है। और यहां वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से आप बिल्कुल सही हैं। ये ठीक वैसी स्थिति है मित्रों जैसे कि हमने जन्म लिया, हमने जैसे भी परिवार में जन्म लिया, जिस स्थान में भी जन्म लिया, जैसे भी परिवेश में हम पले बढ़े, वो एक मुद्दा है, जैसे कि चट्टानी जमीन। यहां मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसी धरती का उदाहरण है, अभी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास एक जिला है शिवपुरी। शिवपुरी जिले की जो जमीन थी वो बिल्कुल अनुपजाऊ थी, बंजर जैसी जमीन थी, वहां कुछ नहीं होता था। कुछ सालों पहले जो पंजाब के किसान थे उन्होंने शिवपुरी माइग्रेट करने का फैसला किया। पंजाब के ये किसान, कर्मठ किसान, पंजाब से शिवपुरी आए और शिवपुरी आने के बाद उन्होंने अपनी भुजाओं की ताकत से उस ऊसर, उस बंजर जमीन को लहलहाती फसल वाली जमीन में तब्दील कर लिया। ये इसका प्रमाण है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज वहां फसलें, हरी फसलें लहलहा रही हैं। तो जमीन तो ऊसर थी, बहुत समय से थी, पता नहीं कितने सालों से थी, लेकिन उसमें बदलाव लाया गया। दोस्तों कुछ समय पहले ही मैंने दशरथ मांझी की बात की थी, द माउंटेन मैन। पहाड़ का काम है रास्ते को रोक कर रखना, अलंग्य है पहाड़ जिसे लांगा नहीं जा सकता, और दशरथ मांझी ने उसे लंघ्य बना दिया, उसे लांगा जा सकता है, लांगा नहीं जा सकता, बल्कि लांगने की जरूरत ही नहीं है, सड़क निकाल दे उसमें से। तो पहाड़ तो था लेकिन अब पहाड़ नहीं है। तो मित्रों जो सेकेंड पार्ट है वो लेने वाला पार्ट है, कि आपको चीजें दी जा रही हैं लेकिन आप अपनी पात्रता बनाइए। अगर पानी की ज्यादा आपको जरूरत महसूस हो रही है और जमीन बंजर ही है और सारे जमीन को उपजाऊ जमीन में तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन तो कम से कम उस बंजर जमीन में पानी का कुंड तो बनाया जा सकता है अगर आपको सिर्फ पानी की जरूरत है तो। और अगर पूरी जमीन को उपजाऊ बनाने की जरूरत है तो पंजाब के किसानों ने वो भी करके दिखाया है। मित्रों आपको इस तथ्य को समझना होगा और बहुत गहराई से समझना होगा, तब आप इस लेने के सिद्धांत को सही मायने में अपने ऊपर अप्लाई करके उसका फायदा भी उठा सकेंगे। अदरवाइज सिद्धांतों की बात तो बहुत होती है, कमी नहीं है, बताने वालों की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी नहीं है, झुंड के झुंड सुन रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लाखों की संख्या की भीड़ सुन रही है, लेकिन पता नहीं कितने ऊसर जमीन उसमें लहलाती हुई जमीन के रूप में तब्दील हो पाते हैं, इस पर जरा सा शक होता है। मित्रों अब मैं आता हूं इसके सेकेंड पॉइंट पर, क्या लेना ही सब कुछ है? अगर आप उस ऊसर जमीन में एक पानी का बहुत बड़ा कुंड, तालाब, जो भी कह लीजिए, बना करके उसमें पानी जमा कर लेंगे तो क्या उसी से सब कुछ हो जाएगा? आपने ले तो लिया लेकिन क्या लेना ही पर्याप्त है? आपको इस सेकेंड पॉइंट को भी समझना होगा। इसे आप इस रूप में ले कि आप खूब पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना ही पर्याप्त है? ठीक वैसे ही जैसे कि कुंड में पानी जमा कर लेना ही क्या पर्याप्त है? सवाल यह है कि आप उस जमा किए हुए पानी का अब करेंगे क्या? आपने जो पढ़ा है उस पढ़ने का आप करेंगे क्या? आपने जो इतना धन कमाया हुआ है, इस कमाए हुए धन का करेंगे क्या? मैं जो इतना शक्तिशाली हो गया हूं, ताकतवर हो गया हूं, जिम जा जा करके मैंने अपनी मसल्स बना ली हैं और मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई है, अब सवाल यह है कि मैं इस शक्ति का करूंगा क्या? ये सेकेंड पॉइंट पहले पॉइंट से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बल्कि मैं समझता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खाना तो खा लिया है, खूब अच्छा अच्छा खाना खाया है, स्वादिष्ट भी था और उसमें विटामिन प्रोटीन और पता नहीं जितनी भी चीजें हो सकती हैं पौष्टिक, उसमें वो चीजें थी। लेकिन यदि मैं अपने इस भोजन को, अपने खाए हुए भोजन को पचा नहीं पा रहा हूं तो क्या होगा? अपच हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, सारा पासा उल्टा पड़ जाएगा। याद रखिए कि केवल लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, महत्वपूर्ण वो लेना तब बनता है जब आप अपने उस लिए हुए का इस्तेमाल करते हैं, उसे पचाते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अगर धन है तो धन का उपयोग करते हैं अपने उपभोग के लिए, अपने परिवार के उपभोग के लिए और समाज के उपभोग के लिए। यदि आप में ताकत है तो आप उस ताकत का उपयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को काम में लगाने के लिए और दूसरों की रक्षा करने के लिए। यदि आपके पास, आपने पढ़ाई की है, बहुत सी सूचनाएं हैं, बहुत मेहनत की है, तो फिर आप उस पढ़ाई का, उस ज्ञान का उपयोग करते हैं नई फिलॉसफी डेवलप करने के लिए, दूसरों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए, उस ज्ञान से कुछ नया ढूंढने के लिए। पचासों चीजें हो सकती हैं, सैकड़ों चीजें हो सकती हैं, हजारों और लाखों चीजें हो सकती हैं। आप अपने ढंग से इस बात का फैसला करते हैं, अपने तरीके से, अपनी सुविधा के अनुसार कि जो कुछ भी मेरे पास इकट्ठा हुआ है, जो कुछ भी मैंने संग्रहित किया है, जो कुछ भी मैंने लिया है, अब मैं उसका इस्तेमाल किस रूप में करूं, यह फैसला करने का अधिकार आपके पास है। आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं और आपका ये जो फैसला है, जितना व्यापक होगा आपको उतनी अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको उतना अधिक आत्मसंतोष होगा और आप उतने ही अधिक अमरत्व के निकट पहुंचते जाएंगे। दोस्तों, कलाम साहब ने लिया, समाज से लिया, देश से लिया, ज्ञान के रूप में लिया, लेने के बाद क्या किया सोच कर देखिए। उन्होंने केवल लिया ही नहीं, उनके साथ के और भी बहुत से इंजीनियर थे और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के लिए तो 7 लोग उनसे टॉप पर थे, ये तो 8वें पोजीशन पर थे और इसी वजह से उनको नौकरी भी नहीं मिली थी। वो 7 कहां है? क्योंकि उन्होंने लिया, लेने के बाद डिपेंड इस बात पर किया कि उसका इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया। नो डाउट उन्होंने इस रूप में तो इस्तेमाल किया ही होगा कि अपनी सर्विसेज एयरफोर्स को दी होंगी, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, उनके परिवार होंगे, उन्होंने अपने परिवार को चलाया होगा, परिवार आगे चल करके पता नहीं उसमें से और कौन किस तरीके से उनके पुत्र किस रूप में निकले होंगे, हो सकता है कि वो और कुछ बड़ा काम किया हो उन लोगों ने। तो यानी कि जब आप ले लेते हैं और कुछ भी करते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता है, वो कुछ ना कुछ करता ही है, कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन सवाल यह है कि जो आपका करना है, जो आपका देना है, वो कितने बड़े स्तर पर है, कितने व्यापक स्तर पर है। कलाम साहब ने जो देने का रास्ता अख्तियार किया वो बहुत व्यापक स्तर पर अख्तियार किया, उन्होंने अपने परिवार की सीमाओं को तोड़ करके पूरे के पूरे हिंदुस्तान को और सच पूछे तो पूरी की पूरी दुनिया को अपने परिवार में तब्दील कर दिया। और उसी तरह से जब उन्होंने चीजें दी तो उनके जाने पर हिंदुस्तान का हर सदस्य इस तरह से रोया, उसने महसूस किया जैसे कि उसके अपने अंदर से कुछ टूट गया हो, उसका अपना कोई चला गया हो, क्योंकि वो सबके अंदर चले गए थे। तो मित्रों, ये है लेना, लेने के बाद उसका इस्तेमाल करना, उसको पचाना ताकि देने के लायक बन सके, और इसके बाद थर्ड स्टेज है देना। ये तीनों मिलकर के लेने के सिद्धांत को स्थापित करते हैं और इस बात को प्रूफ करते हैं कि हमारी अपनी क्षमता लेने पर ही निर्भर करती है और जितनी क्षमता हमारे लेने की होती है हम वही होते हैं। तो मित्रों, इस लेने वाले पॉइंट को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं और मुझे यकीन है कि ये बात शायद आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और ये इस बात का भी थोड़ा सा सबूत दे सकता है कि कैसे एक सामान्य सी सब्जेक्ट को, सामान्य सी बात को आप फिलॉसफी में तब्दील कर सकते हैं। और ये ऐसे राइटिंग की सबसे खूबसूरती होती है। मुझे यकीन है कि इस खूबसूरती को आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे। मैंने एक सब्जेक्ट आपको दिया है, उस पर आप सब मेहनत करेंगे। और मित्रों, शिकायत करना छोड़ेंगे कि मैं चट्टानी भूमि वाला हूं और मैं ऊसर जमीन हूं। नॉट एट ऑल, आप जैसे भी हैं, जो कुछ भी हैं, प्रकृति के निर्मित हैं, संभावनाएं बनी हुई हैं, संभावनाओं का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि संभावनाओं का अंत कभी होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने सेकेंड स्टेज पर, जो AIR न्यूज का स्टेज है। फ्रेंड्स, तीन खबरें AIR न्यूज की सिविल सर्विस के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण लगी मुझे, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इस बात का बड़े अच्छे तरीके से एक अनुमान लगा लिया होगा कि मैं अब किन न्यूज की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि इस बीच में जो मुझे मेल मिलने लगे हैं, उसमें खासकर ऐसे मेल मुझे ज्यादा मिल रहे हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के रहे हैं, कि सर हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने न्यूज सुनी थी और न्यूज सुनने के बाद उसके बारे में सोचा कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आपने उन्हीं की चर्चा की। यहां तक कि परसों मैंने जब आपसे, कल या परसों की बात है, मैंने कहा था कि कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर भी मेल ये आया कि सर मैंने भी न्यूज सुनने के बाद यह समझ लिया था कि आज की कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, यही कैपेसिटी बिल्डिंग है। जिस दिन आप में यह क्षमता आ जाएगी, आप समझ लीजिए कि आप में यह क्षमता आ गई है कि आपको क्या क्या लेना है। देखिए, ऐसा भी नहीं होता है कि जो जो कुछ भी दे रहा है आप लेते चले जाएं, वो भी गड़बड़ होता है। आपको, आप देखेंगे कि जब आप ट्रेवल करते हैं ट्रेन में या जब आप रेलवे प्लेटफार्म पर घूमते रहते हैं, तो आपको सतर्क किया जाता है कि देखिए बहुत लोग आपको प्रसाद बांटते हुए मिल जाएंगे, दूसरे अगर कोई खाने की चीज दे रहे हो तो आप उनसे खाने की चीज मत लीजिए, पता लगा कि उस खाने की चीज में कोई बेहोश करने वाली दवाई मिली हुई है, आपने खाया और आप बेहोश हुए और देने वाला आपकी सारी चीजों को लेकर चंपत हो गया। तो ये जो लेना क्या है, ये भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए, और यही कैपेसिटी बिल्डिंग है। और खासकर मैं अपने इस AIR न्यूज के इस विश्लेषण के द्वारा आपके अंदर वही कोशिश कर रहा हूं डेवलप करने की, कि आप समझ सकें कि कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स, जो लेने वाली जो खबरें थी वो तीन थी। एक नागालैंड के साथ जो सब केंद्र सरकार का, भारत सरकार का जो एकॉर्ड हुआ है, जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दूसरी जो खबर थी वो थी कि जो फिल्म टेलीविजन एंड इंडियन फिल्म टेलीविजन एंड जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, उसके स्टूडेंट अब विरोध करते करते दिल्ली पहुंच गए हैं। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला पर जो एक आरोप था टीचर्स की भर्ती में गड़बड़ी करने का, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुना रखी थी, उसका उन्होंने याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सही है। ये तीन खबरें थी। अब मैं इन तीन खबरों पर थोड़ा सा आता हूं कि सिविल सर्विस की दृष्टि से आपको किस तरीके से इन तीनों खबरों को हैंडल करना होगा। हम अब उस पर आते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। पहला तो हमारा चयन, हमारा चयन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि अगर चयन ही गलत है, जैसे रास्ता, अगर रास्ता ही आपने गलत पकड़ लिया तो फिर चाहे आप हजारों किलोमीटर की दूरी क्यों ना तय कर ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मंजिल आप पहुंची मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो चयन हमारा रास्ता है, राइट, और चलने का जो तरीका है वो हमारे एनालिसिस है। फ्रेंड्स, तो नागालैंड के साथ जो समझौता हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है। मित्रों, समझौते के क्या क्या बिंदु थे अभी वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जो भी उसके रीजन रहे हों कुछ दिनों में वो हमारे सामने भी आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी समझौता एक तो गुप्त नहीं होता है, और फिर जो नागालैंड है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां के लोगों के साथ समझौता किया गया है, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता के अगेंस्ट होगा। कोई सरकार ऐसा समझौता कर ही नहीं सकती है ना, लेकिन किसी भी वजह से, जिस वजह से भी किया गया हो, अभी वो चीजें हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन आपके सिविल सर्विस के पॉइंट व्यू से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नागालैंड के साथ समझौता हुआ है, ये सिर्फ नागालैंड के संदर्भ में नहीं है, बल्कि पूरे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके संबंध में है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट किस तरीके से लगातार कुछ न कुछ वहां आतंकवादी गुटों से परेशान है, वहां इस तरह के उग्रवादी गुट कह लीजिए, आतंकवादी गुट कह लीजिए, जिस तरीके से भी हो वहां सक्रिय हैं। आप मणिपुर में भी सुनते हैं, नागालैंड में भी सुनते हैं, आप असम तो काफी कुछ शांत हो गया है लेकिन असम में भी आपको सुनने को मिल जाती है और दूसरे राज्यों में भी आप सुनते रहते हैं। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि ये सब के सब हमारे ज्यादातर इसके स्टेट्स हमारे इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उनके साथ है, सीमावर्ती राज्य हैं, और सीमावर्ती राज्य होने के कारण जो यहां जो गुट सक्रिय हैं उनको विदेशों में आने जाने में बड़ी मदद मिलने लगती है। तो विदेशों से हथियार भी उनके आयात करने में दिक्कत होती है, आसानी हो जाती है, चाहे वो फिर बांग्लादेश होकर के हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो रहा हो, चाहे वो म्यांमार से हो रहा हो, इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिलती हैं। अब जैसे नागालैंड एकॉर्ड में ही आप देख लीजिए कि एक खापलांग ग्रुप है, वो भी यहां सक्रिय है और वो इस समझौते के पक्ष में नहीं है, इस समझौते के समर्थन में वो खड़ा नहीं है। और मजेदार बात है कि जो खापलांग है ये ऑलरेडी म्यांमार का ही नागरिक है। तो आप सोच करके देखिए कि ऐसी स्थिति में उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो समझौता है नागालैंड जो के साथ जो समझौता हुआ है, ये दोनों ही दृष्टियों से हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी, और इक्वली एक्सटर्नल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहां जो आपको एक दो चीजें, अभी चूंकि समझौता हमारे सामने उसके पॉइंट्स नहीं आ पाए हैं तो हम लोग ज्यादा बातें करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मान करके चलिए कि एक जो खापलांग ग्रुप की मैंने जो बात की ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। आप नक्शा देखिए भारत का और देखिए कि जो नागालैंड की सीमा है वो किन किन विदेशी सीमाओं से मिल रही है, विदेशों के दूसरे देशों की किन किन सीमाओं से, और साथ ही अपने राज्यों की सीमाओं को भी आप देख लीजिए, आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए। और दूसरा, अभी जो समझौता हुआ है वो ग्रुप कौन सा है, उस ग्रुप का नाम आपको याद होना चाहिए और रट जाना चाहिए, इतना रट जाना चाहिए कि जब आपको लिखने की नौबत आए तो आप फटाफट उसको सही रूप में लिख सकें। देखिए एग्जाम में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि नागालैंड में सक्रिय एक उग्रवादी समूह के साथ भारत सरकार का समझौता हुआ, ठीक है, फैक्ट है। लेकिन जब इसी को आप लिखेंगे कि किसके साथ समझौता हुआ, और आप अगर लिखते हैं कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और ब्रैकेट में आप लिखते हैं आईएम का मतलब है आइजाक मुइवा, इस ग्रुप के साथ हुआ है। तो जब आप ये लिखते हैं कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इन ब्रैकेट आईएम, तो जो एग्जामिनर है वो प्रभावित होता है क्योंकि आप टू द पॉइंट बहुत एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज प्रभावित करती हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। कुछ चीजें हमें रटनी ही पड़ती हैं दोस्तों, और रटा हुआ रिटेन रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समय समय पर उसे दोहराते रहें। तो इसके लिए एक बेहतर तकनीक होती है कि हम कुछ चीजें ऐसी अलग से नोट करते चले जाते हैं जो हम दोहराने में हमें मदद मिले, यानी कि सारी चीजों को न दोहरा करके हम बहुत जरूरी चीजों को दोहराने लगे। जैसे कल भी मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, आज भी मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। कल की मैंने क्या चीजें बताई थी आप याद करने की कोशिश कीजिए, मैं अब आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अब यह सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं कि मैं कल की चीजों को दोहरा दूं तो फिर आपको याद आ जाए। आप खुद अपने दिमाग पर दबाव डालिए, आपको अपने दिमाग को भी ट्रेंड करना है इसके लायक कि कल सर ने कौन सी चीजें बताई थी। मैं आपको क्लू केवल बता दे रहा हूं, और वो था जो हमारा पार्लियामेंट अभी भी नहीं चल पा रहा है। न्यूज में भी आपने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट हमारा नहीं चल पा रहा है, उसको लेकर के खबरें थी, उसी से रिलेटेड दो पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे दिए थे कि आपके नॉलेज में ये होने चाहिए, जो जनरली आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अगर आप अखबार में पढ़ेंगे भी तो जनरली हो जाते हैं, तो आप उनको याद कीजिए और उनको भी अलग से नोट कर दीजिए। मित्रों, जो दूसरी जो खबर थी वो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेकर के थी, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस तरह की खबरें अक्सर कभी कभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं कि सरकार उनके पीछे जो व्यूज है, सरकार नहीं कहना चाहिए, मतलब उनके पीछे छिपा हुआ जो एक सामाजिक मंतव्य है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तो खासकर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर सरकार के हस्तक्षेप की बात हो रही है कि सरकार उन्हें अपने तरफ से चलाना चाह रही है, सरकार उनकी स्वायत्तता को नष्ट कर रही है। हिस्टोरिकल सोसाइटीज और जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं उसमें बहुत ही मीडियोकर, बिलो मीडियोकर किस्म के लोगों को उनके महत्वपूर्ण पदों पर बैठा करके वो अपनी जो एक आरएसएस की जो एक नीतियां हैं उनको लागू करवाने की कोशिश कर रही रही है, हिस्ट्री की किताबों को बदल रही है, और उसी के हिस्से में है कि वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में वो एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाह रही है जिसका कोई फिल्म के बारे में बहुत बड़ा जानकारी नहीं है, वर्ल्ड सिनेमा के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कि महाभारत सीरियल में उन्होंने युधिष्ठिर का रोल किया था। तो ये एक मुद्दा बन गया है, बनता जा रहा है ना। सरकार इसके बारे में अपनी तरफ से सफाई देती है, बताने की कोशिश करती है, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। तो इसी को जब आईआईटी वगैरह का मुद्दा चला था, आईआईएम का मुद्दा चला था, तब पिछले साल 2014 का जो सिविल सर्विस एग्जाम के सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें आईआईटी और आईआईएम को लेकर कही था। प्रश्न यह था कि क्या आईआईटी / आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने में अधिक स्वैच्छिक स्वतंत्रता की, और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं / कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं फ्रेंड्स कि शुड द प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी आईआईएम बी अलाउड टू रिटेन प्रीमियर स्टेटस, अलाउड मोर एकेडमिक इंडिपेंडेंस इन डिजाइनिंग कोर्सेज, एंड आल्सो डिसाइड मोड / क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, डिस्कस इन लाइट ऑफ द ग्रोइंग चैलेंजेस। इस तरह का प्रश्न दिया गया था। तो अब आप उसको एफटीटीआई में देख रहे हैं, है ना। तो अब सवाल यह है कि वो स्थिति अभी तक चल ही रही है, और चूंकि इसका मुद्दा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, स्टूडेंट्स अब वहां से चलते हुए दिल्ली तक आ गए हैं, राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप भी होने लगे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि फिर से ये मुद्दा अभी तक चूंकि जीवित है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको अब थोड़ा सा टर्न देंगे। आईआईटी और आईआईएम क्या थे? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट थे। अब वो देंगे खासकर इस तरह के जो कलात्मक संस्थान हैं, क्योंकि जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वो कलात्मक संस्थान है। और आपको ये भी ध्यान होगा, अगर आप हमेशा तैयारी करते समय जो अनसॉल्व पेपर हैं उनकी मदद ले रहे होंगे, तो कि इस फिल्मों पर भी एक इसी तरह से वाक् स्वतंत्रता को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। तो मित्रों ये एक क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी मैंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को 10 साल की सजा बहाल ही रखी है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि न्यायालय जो है ना प्रोएक्टिव होकर के एक तरह से स्वतंत्रता के आदर्शों की प्राप्ति के लिए कोशिश करिए, प्रोएक्टिव होकर के। बहुत समय से ये मांग की जा रही है जनता के द्वारा, सच पूछिए तो, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने ऊपर खुद प्रतिबंध लगाएं कि वहां किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा, पैसे के मामले में वो आदर्श प्रस्तुत करेंगे, चुनाव में पैसे के महत्व को कम किया जाएगा, यहां तक कि चुनावी फंड में जो पैसा आता है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। और इसीलिए यहां तक तैयार नहीं हो रहे पॉलिटिकल पार्टीज कि वो आईटी मतलब जो हमारा आरटीआई है उसमें वो अपने को शामिल करें, तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये खुद तैयार नहीं हो रहे हैं, तो बटने चल रहे कि अब सुप्रीम कोर्ट आगे आ रहा है। तो इसको लेकर के फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको और मजबूत कर रहा है कि कैसे अगर आप अपराध करते हैं तो आपका पॉलिटिकल कैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तब कम से कम शायद राजनीतिक पार्टियों पर दबाव पड़े। तो मित्रों ये एआईआर न्यूज के बारे में था। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स के बारे में। मित्रों आज के न्यूज में आपने दो खबरें, एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर पढ़ी होगी वो ये है कि जो अभी सरकार ने कुछ दिनों पहले जो अश्लील जो साइट्स होती हैं सोशल मीडिया पर उनको बैन किया है, इसको लेकर के अब बहस शुरू हो गई है, आर्टिकल्स भी आने शुरू हो गए हैं। और आप देखेंगे कि फिल्म की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 66A जो सोशल मीडिया की स्वतंत्रता थी वही अब हमारे सामने नए रूप में आ रही है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सीधे तो इस पर बैन नहीं लगा सकते क्योंकि ये व्यक्ति की अपनी जो लिबर्टी है, लाइफ की जो स्वतंत्रता है उसके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई एक ऐसी याचिका आ जाए जिसमें उसने कहे कि भाई मैं तो मैच्योर हूं और मैं अगर अपने कमरे में इस तरह का के साइट्स देख रहा हूं तो उसमें क्या हर्ज है, ये मेरे निजी जीवन की स्वतंत्रता पर एक तरह से आघात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नहीं कर सकते, लेकिन सरकार कुछ न कुछ ऐसी मर्यादाएं एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इसमें डिसेंसी आ सके, उसी को आधार लेकर के अभी सरकार ने कुछ पर बैन किया है। अब सरकार कह रही है कि सरकार भी बड़ी उलझन में है, क्योंकि जब वो इस तरह के कदम उठाती है तो घोषणा कर दिया जाता है कि सरकार तानाशाही हो रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात कर रही है, कुछ लोग दे देते हैं ये तालिबानी बन रही है। ये तालिबानी क्या है मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ये डिस्कशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे। यहां मैं आपको ध्यान रखने के तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड्स, कि अभी रविशंकर प्रसाद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि भारत सरकार बिल्कुल इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक कहना भी है कि इसके बारे में कुछ कहना करना चाहिए, तो सरकार खासकर जो इंटरनेट कंपनियां हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करने जा रही है कि वो एक प्रोविजन है आईटी का, आईटी एक्ट है, वो है 79 और फिर आप ब्रैकेट में करेंगे 3 और फिर ब्रैकेट में करेंगे बी, ये एक एक्ट है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे आपको 66 ब्रैकेट में ए याद होगा, उसी तरह से अब आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, 79 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट बी, ये दो अलग अलग ब्रैकेट है, ये आईटी एक्ट है कि इसके तहत अब इंटरनेट की जो कंपनियां हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे साइट्स पर प्रतिबंध लगाएं, इनको मैनेज करें, यानी कि सरकार भी महसूस करती है कि प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है। साथ ही सरकार ये भी महसूस कर रही कि जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं उस तरीके से भी चीजें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसका जो इमेच्योर माइंड है, जो एडल्ट नहीं है, उनके दिमाग पर बहुत गलत असर पड़ता है, साथ ही साथ उनका बहुत सा टाइम भी इन फालतू की चीजों में वेस्ट होता है, तो कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार अब ये दायित्व आईटी के इस एक्ट के तहत जो इंटरनेट की कंपनियां हैं उन्हीं को सौंपने के लिए सोच रही है। मित्रों, और आज के अखबारों में खासकर आपने देखा होगा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अब सरकार थोड़े से जो इसके बारे में विरोध हो रहा था उसके बारे में अब परिवर्तन करने की सोच रही है कि भूमि अधिग्रहण बिल में और चेंजेस किए जाएं। तो 6 पॉइंट अभी उन्होंने चेंज करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। पहला पॉइंट तो सामाजिक आकलन का है जो पहले निकाल दिया गया था। दूसरा है कि अगर पीपी मॉडल के तहत जमीन ली जा रही है तो जिनकी जमीन ली जाएगी उसके 70% की सहमति चाहिए, और अगर कोई कंपनी ले रही है तो 80% चाहिए, तो इसको फिर से वो लाना चाह रही है। पहले के में प्रोविजन किया गया था कि अगर जो हाईवेज हैं उनसे फिर दोनों ओर के एक एक किलोमीटर की जो जमीन होगी उसे सरकार अधिग्रहित कर सकती है बिना उनकी सहमति के, इसको भी निकालने जा रही है। चौथा पॉइंट है कि उसमें एंटिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। एंटिटी शब्द का मतलब होता है कि फिर सरकार या कोई भी गैर सरकारी कंपनी भी, गैर सरकारी व्यक्ति भी जमीन का अधिग्रहण कर सकता है, ले सकता है, मतलब अधिग्रहण तो नहीं कहना चाहिए, उसकी जगह पर अब कंपनी शब्द लाया जा रहा है ताकि केवल कंपनी को ही अधिकार दिया जाए। फिर इससे पहले जो बिल पेश किया गया था उसमें सरकारी अधिकारियों को इस तरह के किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अब सरकारी अधिकारियों को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा कि वो सही तरीके से करें। और जो छठवां पॉइंट है मित्रों, वो ये है कि पहले कई मामलों के लिए जमीन अधिग्रहित की जा सकती थी, लेकिन अब उन कई क्षेत्रों वाले जो का जो हिस्सा था उसको हटाया गया है, केवल कुछ ही मामलों में किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा सकेगी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इसको लेकर के ही जो दूसरी पार्टियां थी वो सरकार के इस वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसका विरोध कर रही थी। और सच पूछे तो ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है दोस्तों, ये सरकार की दो तरह की इमेज भी बिल्डअप कर रहा था। एक इमेज तो ये दे रहा था कि सरकार जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उनको नहीं मान रही है, और दूसरा यह कि सरकार ये जो भूमि अधिग्रहण बिल ला रही है ये किसानों के पक्ष में या जिनकी भूमि है उनके पक्ष में न होकर के ये पूंजीपतियों के पक्ष में ज्यादा है। तो सरकार की इस तरह की भी इमेज थोड़ी सी बिल्ट अप हो रही थी। तो अब ये जो 6 पॉइंट सरकार ने अब इंक्लूड किए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये छयों के छयों पॉइंट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टली क्लियर जिसको कहते हैं वो बैठ जाने चाहिए। तो मित्रों, आज किसी वजह से मुझे ईमेल नहीं मिल पाए हैं, तो ईमेल के जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जिनके भी ईमेल हैं वो सभी शामिल किए जाएंगे। संडे के भी ईमेल अभी तक शामिल नहीं किए जा सके हैं, तो कल हम इन चीजों को शामिल करके फिर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो ऑडियो गाइडेंस है, डेली ऑडियो गाइडेंस, यहीं समाप्त करने की मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।